الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة إسراء آيات نمبر 46-60 تک. أفأصفاكم، کیا بھلا چن لیا تم کو اور ربكم تمہارے رب نے بالبنین، بیٹوں کے ساتھ، ابن کی جمع بنین، واتخذ من الملائکة ناسا، اور بنا لی فرشتوں میں سے بیٹیاں، لڑکیاں سے مطلب ہے کہ بیٹیاں. اب یہاں پہ جو مخاطب ہیں وہ مشرکین مکہ ہیں، چونکہ وہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. اور یہاں سے، اس آیت سے لے کے اب آگے جتنا آج ہم سبق پڑھیں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ مشرکین کے جو مختلف عقائد تھے نا، جو ان کی غلطیاں تھیں عقیدے کی، ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، ان کی تصحیح کی گئی، ان کے کانسیپٹس کو کلیئر کیا گیا کہ یہ آپ جو بات کہتے ہیں، جو آپ کا عقیدہ ہے، وہ صحیح نہیں ہے. کہیں تو ان کے عقیدے کو مینشن کر کے پھر ان کے اعتراضات کا اور ان کی غلطیوں کا جواب دیا گیا، کہیں بغیر مینشن کیے ہوئے ان کو جواب دیا گیا. شرک کی ممانعت اور قرآن اور رسالت پر اعتراضات کا جواب آپ دیکھیں گے آج کے سبق میں. شرک ایک ایسا عقیدہ ہے جو جہالت میں پنپتا ہے. علم، عقل، دانش، دانائی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کبھی بھی علم سے جب بات کی جائے تو وہاں شرک نہیں رہ سکتا. اب مشرکین مکہ ایک بہت ہی بری بات کہتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یہ ملائکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی فرشتے کا نام لیتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ بھی اللہ کی بیٹی ہے. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہ کیوں اتنی بری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا فرمایا؟ انکم لتقولون قولا عظیما. یہ جو بات ہے نا، یہ تو اتنی بڑی بات کہتے ہو، اتنی بری بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے، اتنی یہ بری بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اولاد ہوتی ہے تو وہ انسان کی ایک محتاجی کی علامت ہے. اولاد کا انسان محتاج ہوتا ہے، اولاد اس کے لیے مددگار ہوتی ہے، یا اولاد اس کا نام آگے قائم رکھنے کے سبب بنتی ہے. یا انسان کہتا ہے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میری اولاد میرے لیے کھڑی ہوگی، اولاد میرے بازو بنے گی. اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی محتاجی نہیں، نہ اس کے اوپر بڑھاپا ہے، نہ کمزوری. جب کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کو اس کے مقام اور مرتبے سے اصل میں وہ گرا دیتا ہے. اور اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ کو سمجھا ہی نہیں کہ وہ کیا ذات ہے. اور آن ٹاپ آف اٹ یہ کہنا کہ اس کی بیٹیاں ہیں، یہ اس لیے اس کی زیادہ یہاں پہ بات کی گئی اسپیشلی، کیونکہ اس کا مطلب تم نے اللہ تعالیٰ کو اتنی بھی عزت نہیں دی جتنی اپنے آپ کو تم سمجھتے ہو، جس قابل اپنے آپ کو سمجھتے ہو اتنی بھی تم نے اللہ کی قدر نہیں جانی. تمہاری کیے تمہارے نزدیک کیا قدر ہے اللہ کی کہ خود اپنے لیے جو چیز پسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے نہیں مقرر کرتے، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اتنی تمہیں بیٹیاں بری لگتی ہیں کہ تم ان کو زندہ دفن کر دیتے ہو، لیکن وہ اللہ کے لیے تم منسوخ کرتے ہو، اس کے لیے قرار دے دیتے ہو. سوچو تو صحیح، کتنی آسانی سے تم ایک بات کہہ دیتے، लेकिन ये सोचो कि वो चीज अल्लाह ताला के साथ बयान करना जो अपने लिए तो पसंद नहीं, अपने लिए कराहत रखते हो, और वो अल्लाह के लिए बयान करते हो। इसका मतलब तुमने अल्लाह ताला को इतनी भी वैल्यू नहीं दी जितनी अपने आप को देते हो, जितना अपना ख्याल करते हो। ये बात नहीं कि अल्लाह ताला को कोई बेटियां नहीं पसंद, उसके लिए तो कुछ भी नहीं, कोई भी औलाद नहीं, ना बेटे ना बेटियां, मगर उनको बताया गया कि ये उससे भी ज्यादा तुम्हारी, यानी उनकी जो उनकी साइकी है उसको बयान किया गया है कि देख लो अल्लाह के लिए वो पसंद करते हो जो अपने लिए भी पसंद नहीं करते, अपने लिए भी नहीं चाहते। अपने यहां बेटी हो जाए तो मुंह सिया हो जाता है, गम से भर जाता है। पहले हम पढ़ चुके हैं ना कि उनकी क्या कैफियत होती थी, और अल्लाह ताला को वो चीज मंसूब करते हो। इससे ये सिर्फ जाहिर होता है कि तुम्हारे नजदीक क्या वैल्यू है अल्लाह की। तो क्या अल्लाह ने तुम्हें तो बेटे दे दिए और अपने लिए बेटियां बना ली? सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि इतनी बुरी बात है अल्लाह की औलाद ठहराना कि आसमान करीब है कि आसमान इससे फट जाए, जमीन शक हो जाए, इतनी बुरी बात है। तो अल्लाह ताला के लिए औलाद ठहराना जो आज ये ईसाई भी कर रहे हैं और मुशरिकीन उस वक्त भी करते थे, और आज भी जो भी इस तरह की बात करे, ये इतनी बुरी बात है। इस चीज की नफरत हमारे अंदर होनी चाहिए कि अल्लाह ताला की कोई औलाद ठहराए तो हम इसको बहुत कोई मामूली बात ना समझे। अल्लाह की औलाद ठहरा के और उसकी बर्थडे कर रहे हैं कि आज अल्लाह के हाँ नाऊज़ बिल्ला बेटा पैदा हुआ है, और वो खुशी कर रहे हैं तो हम भी उनको उस खुशी की मुबारकबाद देने लग जाए। ये कहाँ की अकल है, जबकि ये कितनी बुरी बात है। इस चीज को बताया गया, इन्नकुम लतकूलून कौलन अज़ीमा, बहुत बड़ी बात है ये। तो इससे दो बातें पता चली, एक ये कि कोई भी अगर गलत बात अल्लाह ताला से जोड़ता है ना तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है ये। नंबर टू क्या बात है कि अल्लाह ताला की जात में कोई मोहताजी बयान करना, कोई नुक्स बयान करना, जैसे कि औलाद उसके साथ जोड़ दी, उसमें कमी दिखाई ना, ये भी हराम है, क्योंकि वो वहदहू ला शरीक ला है, उसको किसी मददगार की जरूरत नहीं। लिहाजा ऐसी बात करना भी हराम है। जब हम कहते हैं वो अस्समद है, वो लम यलिद वलम यूलद है, तो वो हम क्या कह रहे होते हैं? हर नमाज में ही तकरीबन हम ये सूरत पढ़ते हैं, कम से कम एक दफा तो पढ़ ही लेते हैं। बड़ी अजीम सूरत है, इसको कुरान का तहाई करार दिया गया। कितनी बड़ी बात हम इसमें डिक्लेयर करते हैं, और फिर उसके बाद हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई बेटा कह रहा है खुदा का, अगर कोई ये कह रहा है कि आज वो पैदा हुआ है, तो हमें ये कोई ऐसी हमें नागवारी नहीं लगती, बल्कि हम भी मुबारकबादें पेश करते। तो इसकी कराहत होनी चाहिए। कुरान बताता है कि ये कितनी बुरी बात है। फिर उनके चर्च में जाके बैठ जाते हैं, यहाँ पे वो कहते हैं ये खुदा का बेटा सूली चढ़ाया गया। वलकद सर्रफना फी हादल कुरान, और अलबत्ता तहकीक फेर कर लाए हैं हम इस कुरान में, यानी आयतों को बताया गया फेर फेर कर बयान किया, तरह तरह से बयान किया। क्यों? लियतज़क्करू, ताकि वो नसीहत पकड़े। कुरान को फेर फेर के इसमें बातों को समझाया गया। तसरीफ का मतलब है फेर फेर बदल बदल के, फेर फेर के बयान करना, स्टाइल डिफरेंट तरीके अपनाए गए हैं। जैसे कि आप देखते हैं अभी तक आपने जितने पारे पढ़े हैं, आपने देखा है कि इसमें कहीं तो वाज़ो नसीहत के साथ बात की गई, कहीं दलील दे के बात की गई, कहीं आपको जन्नत का शौक दिलाया गया, कहीं आपको जहन्नम से डराया गया, कहीं आपको मिसालें बयान की गई कि जैसे मिसाल शिर्क की ऐसे है जैसे किसी के कितने गुलाम हो और फिर वो गुलाम हर एक आका को खुश करने के लिए लगे हो, कितनी तरह से मिसालें बयान की गई हैं। कहीं तारीख के हिस्ट्री के वाकयात, समूद आद कौमे नूह इनके वाकयात बयान किए गए, हर तरह से समझाया गया। इससे पता चलता है अल्लाह ताला तो चाहता है कि लोग समझ जाएं, लेकिन लोग नहीं समझना चाहते। तो फिर ये इल्जाम ना दिया करें कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, अल्लाह ताला ही हमें हिदायत नहीं देना चाहता, अगर अल्लाह चाहता तो हम हिदायत पा जाते। ये कैसे आप अल्लाह ताला के ऊपर इल्जाम दे सकते, जबकि उसने तो तरह तरह से इस कुरान में चीजें बयान की कि कोई रास्ता तो हो जिससे समझ जाओगे, क्योंकि किसी इंसान को शौक दिलाने से उसको बात समझ आती, कोई इंसान तो डरावे से समझता है। अब आप देखें, आप अपने बच्चों को किस किस तरह समझाते हैं। कभी हम आप उसको कोई इनाम दे के कहते हैं मैं तुम्हें ये लेके दूंगी, कभी कहते हैं अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी, कभी आप उसको किसी और की मिसालें देते हैं जी फलां के बच्चे को देख लो, देखो उसने कितना वो लूज किया वो। कभी आप किसी किसी बात बताते हैं, अपने बचपन की कोई बात बताते हैं, अपने बड़ों की कोई बात बताते हैं। क्यों? ये आपकी हमदर्दी होती है, आपकी खैर ख्वाही होती है अपनी औलाद के लिए कि आप कहते हैं किसी तरह ये समझ जाए। अल्लाह ताला इंसान से मोहब्बत करता है, वो चाहता है कि इंसान समझ जाए। हम ये सोचते हैं ना, पता नहीं उसने हमें तो इसलिए पैदा किया, अब हम जहन्नुम में जाना ही है तो ठीक है, वो तो चाहता ही नहीं है कि हम संभले, वो तो चाहता ही नहीं है कि हमें हिदायत मिले। जबकि कुरान कहता है देख लो अल्लाह ने तुम्हारे लिए किस किस तरह से तरीके अपनाए तुम्हें समझाने के लिए। अब तुम खुद ही ना समझो तो कसूर किसका है? उसने पैगंबर तक भेजे, उसने किताबें भेजी, और किताब में भी एक लाइन में भी लिखा जा सकता था ये हिदायत पालो सीधे हो जा, लेकिन उसने कितनी तरह बातें बयान की, मगर इंसान समझने की तरफ नहीं आता। हर तरह से हमें समझाया गया, और आप अब तक देख चुके हैं ना किस किस तरह से, किस किस तरह से हमें झंझोड़ा गया, किस किस तरह से कभी हमें फ्यूचर की बातें, आखरत की बातें बताई गई, कभी हमें पिछले जमाने की बातें बयान की गई, कभी हमें अभी का फायदा बताया गया। देखो इसमें तुम्हारा दुनिया का भी फायदा है, इसमें तुम्हारा आखरत का भी फायदा, और कैसे समझाया जाए बताएं। लेकिन ना इंसान इतना ढीठ हो जाता है कि वो सुन सुन के भी समझता नहीं है, वो फिर भी रास्ते पे नहीं आता। लेकिन वो रब कितना करीम है, वो रब कितना रहीम है, हालांकि फायदा उसका नहीं, फायदा हमारा है। वो ऐसे जैसे वालदैन अपनी औलाद के लिए खैर ख्वाही रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं, ये इसी की निशानी है कि वो इतनी तरह से बात को समझाते हैं। अल्लाह ताला भी बंदे से मोहब्बत करता है, उसे खैर ख्वाही रखता है, उसको बचाना चाहता है, तब उसको बताता है। लेकिन बंदा क्या कहता है कि नहीं ये बड़ा मुश्किल, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो अमल में आ ही नहीं सकता, मैं क्या करूं, मैं तो बड़ा मजबूर, मैं ना मानू। वो मानने को ही तैयार नहीं। और ये सारी बातें आपको तरह तरह से समझाना, आपको बोझ में डालना नहीं है, ये 30 पारे आपको मुशक्कत में डालने के लिए नहीं उतारे अल्लाह ने, ये आपके लिए कोई मुसीबत नहीं है। हाय कब खत्म होगा, हाय ये बड़ा मुश्किल, हाय ये क्यों, अल्लाह ताला ने तो इसलिए उतारे लिया तक क्या रू, ताकि वो नसीहत पकड़े तुम्हारी, नसीहत के लिए, ताकि आप संभल जाए। कितनी मोहब्बत है रब को, हालांकि उसका कुछ नहीं नुकसान अगर सारे नाफरमान हो जाए, सब भी जहन्नुम में चले जाए, और उसको कोई फायदा नहीं है यार सब जन्नत में चले जाए, फिर भी इंसान कितना नाशुकरा है, फिर भी इंसान अल्लाह ताला की मोहब्बत को नहीं पहचानता, उसकी खैर ख्वाही को नहीं समझता कि वो रब कैसा है खैर ख्वाह, उस रब ने मेरे लिए कितना कुछ इंतजाम कर दिया, फिर भी वो इल्जाम रब को ही देता है। मैं हिदायत पे नहीं, इसका कसूर भी अल्लाह का ही है, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं। लेकिन क्या होता है इंसानों का हाल क्या है, वमा यजीदुहुम इल्ला नुफूरा। वो नहीं बढ़ाता, ये कुरान बार बार जो आ रहा है ये उनको नहीं बढ़ाता, मगर नफरत में इनकी नफरत ही बढ़ती है। इन बजाय इसके कि ये कुरान पढ़ के इस तरफ को आए, इनके दिल डर जाए, ये संभल जाए, इनके रोंगटे खड़े जाए, क्योंकि कुरान में है कि जो इन लोगों के बारे में कि जो जब कुरान सुनते हैं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके दिल डर जाते हैं अल्लाह के खौफ से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको बात समझ नहीं आती, वो सुन के और भिदकते हैं और दूर भागते हैं, उनकी दूरी बढ़ जाती है। क्या फर्क है, एक ऐसे हैं जो संभल जाए और एक ऐसे हैं, क्या फर्क है? फर्क अपने अंदर है। अपना अंदर ही जब गंदा हो ना, तो फिर ये कुरान जैसा है कलाम भी असर नहीं करता। ऐसे ही जैसे आप देसी घी का पराठा किसी बीमार को खिला दो तो और ही बीमार हो जाएगा, उसके अंदर बीमारी है ना, उसको ये सेहत अफजा चीज भी फायदा नहीं देगी। आप तंदुरुस्त को खिलाएंगे उसकी एनर्जी बढ़ेगी, आप बीमार को दे देंगे और बीमार हो जाए। इसी तरह ये कुरान है, ये शिफा है, ये रहमत है, ये बरकत है, लेकिन उनके लिए जिनका अपना अंदर ठीक है, ये उनको कुव्वत बख्शता है। और जिसकी अपनी फितरत ही बिगड़ी हुई है, तो फिर अल्लाह ताला ने तो फरमाया वाला कद यस्सर नल कुरान लिदिक्री फहल में मुद्दकर, हमने तो आसान कर दिया इस कुरान को नसीहत के लिए, कोई है नसीहत पकड़ने वाला? वो उल्टा तो असर पड़ता, और ही दूर भागते, उनकी नफरत और बढ़ती है, उनको समझाया जाता है वो सुनना ही नहीं चाहते, यानी नेगेटिव असर लेना। तो कसूर कुरान का नहीं, कसूर उनका है। अब बारिश बरसती है, वो जमीन जो दजरखेज होती है उससे सब्जा उगता है, वो जमीन जो बंजर होती है, शोरे जरा ज्यादा होती है, उसके अंदर क्या होता है, कीचड़ होता है, बंजर जमीन पे पानी बह जाता है, कुछ भी नहीं उगता। तो फर्क तो जमीन का हुआ ना। قل لو كان معه آلهة كما يقولون, कह दीजिए ए नबी, आप कह दें अगर अल्लाह के साथ और भी इलाह होते जैसे ये दावा करते हैं कि अल्लाह के और भी कोई उसके बेटा है, कोई बेटियां बताते हैं या और शरीक बताते हैं, अगर जैसे ये कहते हैं उस तरह अल्लाह ताला की साथ वाकई इलाह होते अगर, तो इधल लबतगौ इला दिल अर्शी सबीला, तो तब क्या होता, वो तो तलाश करते अर्श वाले के लिए रास्ता। इस आयत में डिफरेंट माने मुफसरीन ने बयान किए, सभी ठीक हो सकते। एक माना ये कि अगर और भी इलाह होते, और भी लोगों के पास इख्तियार होता, अथॉरिटी होती, पावर होती, कुव्वत होती, इसलिए कि इला तो वही होता है ना जो बा इख्तियार हो, बे इख्तियार तो इला हो ही नहीं सकता, उस बात और अथॉरिटी नहीं, वो थोड़ी इला होता है। यानी अगर तुम तो मानते हो कि कोई और इला है, तो मसलन तुम्हारी बात मान ली जाए कि भाई और इला है, तो ये देखो दुनिया से ही आप देख ले, जितने भी हुक्मरान आए ये उन्होंने अपनी हुकूमतों को एक्सपैंड करने के लिए दूसरे मुल्कों पे चढ़ाइयां की, उनके साथ लड़े, दुनिया में जितनी जंगें हुई वो किस लिए हुई, पावर को अपनी बढ़ाने के लिए ना। एक सिकंदर निकला, वो कहां से कहां फतुहात करता करता कहां तक पहुंचा, आराम से तो नहीं बैठते, वो आगे आगे लड़ते जाते हैं, आगे आगे पहुंचते जाते हैं, इख्तदार की जंग होती है। तो अगर और भी होते आलेहा इला माबूद, तो वो तो जंगे करते और अपनी और हुकूमत बढ़ाने की कोशिश करते, आराम से तो नहीं बैठते, उसके पास तो पावर होती, एक पावर वाला दूसरी पावर वाले को घिरा के और अपनी पावर बढ़ाना चाहता, वो क्यों दूसरे के साथ साथ चलता। लेकिन आप देखें इस कायनात में जितनी हार्मनी है, जमीन पे जंग होती है इंसानों के दरमियान, लेकिन आप आसमान की तरफ निगाह उठा के देखिए, आप इस कायनात में गौर करके देखिए, कहीं कोई पावर की जंग नजर आ रही है आपको? कहीं कोई खून खराबा, कहीं कोई तीरों की बारिश, कहीं कोई लड़ना झगड़ना? कितनी हारमोनी है, कितना सुकून है कायनात में। इंसान ने उधम मचाए हुए हैं, लेकिन कायनात में कितना सुकून है? क्या ये नहीं समझाता तुम्हें कि इला एक ही है? लेकिन आप कितनी तौहीद की आप इसमें दलाइल देखेंगे। हर किस्म के शिर्क को काट दिया गया, ये मक्की सूरत है ना। देखो तुम अगर किसी में भी पावर समझते हो, तुम समझते हो इसके पास भी पावर है, इसके पास भी कोई इख्तियार आते, क्यों नहीं वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करके अर्श वाले को गिरा के और वहां पे अपनी हुकूमत कायम करना चाहता? क्यों नहीं वो तलाश करता अर्श वाले की तरफ सबीला? अच्छा, फिर दूसरा मफहूम ये है कि जिनको ये इला कहते हैं कि ये अल्लाह के यहाँ हमारे सिफारशी हैं, हम इनकी बंदगी इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, तो अगर ऐसा ही होता तो कितने अरसे से तुम्हारे आबाओ अजदाद से ये शिर्क चल रहा है? तो कुर्ब का कोई तो अभी तक रास्ता पता चल जाना था, अभी तक कोई रास्ता ही नहीं मिला कुर्ब का। अल्लाह अकबर। तीसरा एक और मफहूम है कि अगर कोई और इलाह होता तो वो भी तो मखलूक ही होता, इसलिए कि हर कोई मानता है, मुशरिक भी मानता है कि इस कायनात का खालिक एक ही है। सब कहते हैं, जितने आप मुशरिकीन से भी बात कर ले वो कहते हैं छोटे छोटे ये सारे हैं लेकिन ऊपर वाला तो एक ही है, वो भी कहते हैं ऊपर वाला कहते हैं ना। तो जो बाकी सारी हैं वो तो फिर मखलूक है, राइट? एक खालिक है, एक ऊपर वाला है, मान ली तुम्हारी बात, एक ऊपर वाला है, तो फिर खालिक तो अकेला ही है। अगर और भी इबादत के लायक है तो वो तो सब मखलूक है, और मखलूक का काम क्या है? कि वो खालिक की बंदगी करे, ये खालिक का हक है। हदीस में आता है ना, बुखारी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने हजरत मुआज बिन जबल से पूछा था कि अल्लाह ताला का हक क्या है, उन्होंने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया अल्लाह का हक ये है अपनी मखलूक के ऊपर कि मखलूक सिर्फ अल्लाह की बंदगी करे। फिर पूछा ये जानते हो मखलूक का, बंदों का हक अल्लाह पे क्या है? तो बंदों का हक अल्लाह पे ये है कि जो उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता अल्लाह ताला उसको अजाब नहीं दे, ये बंदों का हक है। लेकिन अल्लाह का हक क्या है हमारे ऊपर कि हम सिर्फ उसकी इबादत करें? ये उसका हक है, हम उसको उसका हक दें। जब हम उसको उसका हक नहीं देते तो ये जुल्म होता है, फिर ये है वो जो जुल्म अजीम है, शिर्क सबसे बड़ा गुना। और आप देखें ये तो शिर्क है ना, ये सबसे बड़ा गुना है, इसका मतलब तौहीद जो है सबसे बड़ा नेकी का काम है। इसे उलट कर लेना, और अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा इसलिए वही कलिमात हैं जिसमें उसकी तौहीद बयान होती है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो कलिमा है अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अफजलु जिक्र है, ये जिक्र में भी सबसे जबरदस्त अफजल जिक्र। तो तौहीद का बयान करना बहुत बड़ा अमल है, इसी की बेस के ऊपर नेकियां कबूल होंगी कयामत के दिन। इसी पे कोई मौत पाता है, वफात पाता है, तो उसके लिए जन्नत है। यही वो कलमा है जिसकी बेस पे कयामत के दिन किसी इंसान की नेकियों और बदियां तुलेंगी। अगर ये कलमा नहीं है तो नेकियों और बदियां तुलने का तो सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। इसलिए क्योंकि फिर तो सीधी जहन्नुम है। यही वो कलमा है कि सुबहान अल्लाह, आसमान जमीन इनको सबको एक जंजीरों में जकड़ दिया जाए और उसके ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह को मारा जाए तो सब रेजा रेजा हो जाए। यही वो कलमा के सातों आसमान जमीन एक तराजू पे रख दीजिए, दूसरी तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह उनसे ज्यादा वजनी है, ये छोटी बात नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा जो है ना बहुत बड़ी बात है जो इंसान डिक्लेयर करता है, लेकिन ये समझ के बोलने की बात है, ये इसके ऊपर ईमान रखने की बात है कि कोई इला है ही नहीं, सिवाय अल्लाह के, ये डिक्लेयर करना नहीं है कोई इलाह, नहीं, सबकी नफी पहले करना। इंसान नफी नहीं करता, तो इंसान कहता है हाँ अल्लाह इलाह है, और लेकिन उसके साथ और भी इलाह है, यही तो शिर्क है। और इसी कलमे को अहसनुल हसनात कहा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ये सबसे अच्छी और बेहतरीन नेकी है, सबसे वजनी अमल मीजान में ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। हशर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात का सबब, अहम सबब यही कलमा, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये वो कलमा है जो अल्लाह ताला के हजूर खुद पहुंच जाता है, कोई चीज इसको रोक नहीं सकती है। जो बंदा इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं इस कलमे के लिए, यहां तक कि ये कलमा अर्शे इलाही तक पहुंच जाता है, बशर्ते के कहने वाला गुनाह कबीरा से बचता रहा। तिर्मिजी में ये रिवायत है। तो आपको पता है ना, पाकीजा कलमा तो अल्लाह ताला की तरफ चढ़ते हैं, तो ये वो पाकीजा कलमा और ये वो मुबारक कलमा जिसके कहने वाले के लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसीलिए तो कहा गया ना, वजू करे और उसके बाद जिसने वजू अच्छी तरह किया उसके बाद ये कलमा पढ़ा, उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अशहद ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु, जिस दरवाजे से चाहेगा दाखिल हो जाए। ये वो कलमा है, इतना अजीम है, ये समझ ले जन्नत की चाबी है। तो ये जो सच्चाई के साथ बोलता है, जो इसकी गवाही देगा, तो बुखारी में रिवायत है कि अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग पर हराम कर देगा, तो जहन्नम से महफूज हो जाएगा। तो इसलिए ये मामूली बात नहीं है, याद रखिए, ये ऐसी बात है, ये ऐसा कलमा है कि जो सब की नफी कर देता है कि कोई और माबूद है ही नहीं। और ये कलमे पे जब हम ईमान रखते हैं ना, उसके बाद समझ जाएं कि हमने सबकी नफी कर दी भी, उसके बाद क्या पॉइंट रह जाता है कि हम कहीं जाके औलाद मांगे, कहीं जाके शिफा मांगे, कहीं जाके रिस्क मांगे, कहीं किसी के दर पे जाके सजदे करें, किसी के आगे हाथ उठाएं, क्योंकि ये सब मुरासमे इबादत हैं। याद रखिए, अभी आगे भी हम इसके ऊपर बात करेंगे, दुआ करना, नमाज पढ़ना, ये सब रोजा रखना, कुर्बानी करना, सदका करना, नजरों नियाज करना, ये सब इबादत की मरासिम है, इबादत के रिचुअल्स हैं, इबादत का पार्ट है, समझ लें आप, समझ, अब पार्ट्स ऑफ इबादत है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ इबादत समझ लें। अब ये जब आप इबादत इबादत तो कहते रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ये कहते रहते हैं, इसकी रट लगाई हुई है, उसकी तस्बीह कर रहे हैं, फिर उसके बाद जाके कहीं और खड़े हो, कह रहे हैं ये गौसे आजम है, ये मुश्किल कुशा, ये हाजत रवा, ये फिर कैसे हो गया? नजर नियाज किसी और के नाम की दे रहे हैं, कुर्बानी किसी और के नाम की कर रहे हैं, नमाज भी कोई गौसे आजम के नाम की पढ़ रहा है, किसी ने किबला अपना अजमेर बनाया हुआ, ये क्या बातें हैं? फिर तो सबकी जड़ कट जाती है जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह समझ के कहते हैं। इसका मतलब पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं, शऊर ही नहीं। हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे मुल्कों में देख ले अब किस तरह शिर्क कर रही है और साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती जा रही, समझ ही नहीं, पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। तो अगर तुम जिस तरह कहते हो इनके पास भी इख्तियारात हैं, तो तुम तो मानते हो ना, खुद मानते हो कि खालिक एक है, तो अगर एक खालिक है तो उसका मतलब खालिक कोई और है नहीं, बाकी सारी मखलूक है, मखलूक का तो काम है कि वो खालिक की बंदगी करे, तो जिनको तुम मान रहे हो इसका मतलब वो तो मखलूक है, क्या ये सारे खालिक है? नहीं, तुम खुद कहते हो एक खालिक। अरे लॉजिकल बातें हैं ये सारी, फिर भी क्यों नहीं समझ आते? ये अपील करती हैं जहन को, ये इतनी इनके अंदर ये सेंस मेक करती हैं, फिर क्यों हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं, क्यों हम फिर वही शिर्क के धंधों में पड़ जाते, सिर्फ इसलिए कि उसने कह दिया, उसने कह दिया। यहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, यहाँ पे ये होता, ये कहानियां किसने बना दी, इनको किसने बता दिया? खालिक तक देखें, खालिक तक पहुंचने का उसकी उसने दुआएं कबूल कर ली है ना, जिस रब ने खुद बता दिया ये सब कुछ हमें जो कुरान में है, तो फिर उसके बाद फिर इनकी बातों पे आप यकीन करते कुरान की बात छोड़ के, क्योंकि इसने कह दिया कि यहां से सब कुछ मिलता है। कुरान की बात आपने पीछे कर दी, कुरान की नाउजुबिल्ला बात को आपने झटक दिया कि ये बात गलत है क्या, और उनकी बात सच्ची है। सुबहाना हो, वो तो पाके से सुबहान का मैंने आपको कई दफा बता चुकी हूं, अब आप सबको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। सुबहान, क्योंकि हम सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह इसकी तस्बीह करते हैं। सुबहान कितनी बड़ी बात है जो आप कहते हैं मुंह से, वो सुबहान का मतलब है वो हर ऐब से, हर नक्स से, हर कमजोरी से जो किसी के दिमाग में जर्रे बराबर भी कोई कमजोरी की चीज आ सकती है ना, वो तस्वुर भी कमजोरी का, ऐब का, नक्स का आ सकता है, वो उन सब से पाक है और हर तरह के कमालात उसके अंदर है। तो सुबहान अल्लाह का मतलब है वो ऐबों से, नकायस से पाक है, और जो कमालात है ना, कमाल अच्छाइयां, अच्छी सिफात है, वो उसके अंदर कमाल दर्जे को, इसका मतलब है कि फिर उसको तो ये तो नक्स हुआ, अगर उसको नायब की जरूरत है, किसी मुशीर की जरूरत है, कोई मशवरा उसको दे, उसे किसी से पूछना है, वो तो मशवरा हम लेते हैं ना, क्योंकि हमें लगता है देखो किसी से मशवरा कर लो, क्योंकि हो सकता है पता नहीं मेरी बात सही है, किसी से हो सकता है कोई और इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो हमारे जैसे लोग करते हैं जो जिनके अंदर कमजोरियां हैं, जिनके अंदर कोई अकल की कमी है, जिनके अंदर इल्म की कमी है, वो अलीम है। जब आप देखो, मुझे अफसोस दुख इस बात का होता है कि इंसानों ने अल्लाह ताला की जो तौहीद है ना, तौहीदे अस्माओ और सिफात को भी नहीं समझा। अगर वो ही समझ लेते ना, तौहीदे उलूहियत है, तौहीदे रबूबियत है, तौहीदे अस्माओ और सिफात है, अस्माओ और सिफात को अगर आप समझ लें अल्लाह की, तो आपका जहन खुल जाता है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ आप अस्माए हुस्ना को समझें, हमारी कैपेसिटी दिमाग की इतनी नहीं है कि हम इनकी डेप्थ तक पहुंच सके, लेकिन जितनी भी हमारी है छोटी छोटी अकल के मुताबिक, छोटी समझ के मुताबिक, जितनी तक भी हम सतही तौर पे भी समझ जाए ना, तब भी इंसान इन ओ होता है अल्लाह ताला की सिफात से कि वो रब ऐसा है, आप हैरान और परेशान रह जाते कि वो रब ये है। अब जब आप अस्माउ सिफात को समझ जाते हैं ना, तो ये सारे शिर्क खत्म हो जाते हैं। अस्माउ सिफात को ना सिर्फ समझना बल्कि इनके ऊपर ईमान रखना कि अल्लाह ऐसा है, ये है उसके अस्माउ सिफात, फिर सारी चीजें हकीर लगने लगती हैं, फिर सारी चीजें छोटी लगने लगती हैं, फिर सारी चीजें इतनी बेमानी लगने लगती हैं। तो इसलिए जो अल्लाह ताला को समझ जाता है, उसकी अजमत को पहचान जाता है ना, फिर वो ये जान जाता है कि ये क्या जिनके पास मैं जाके कुछ मांगू, या जिनको मैं कुछ समझू, या से मैं कोई उम्मीदें रखू, या जिन पे मैं भरोसा करूं, मेरा भरोसा तो उस रब्बुल आलमीन पे। तो सुबहान हो, जब इंसान ये कहता है और अल्लाह ताला ने फरमा दिया अपनी जात के लिए खुद कि सुबहान सिर्फ वो ही है, उसके अलावा कोई सुबहान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो नक्स से पाक हो, यूब से पाक हो, हर किस्म की कमजोरी से हो, कैसे हो सकता। और हर बादशाह को वजीर चाहिए होता है, हर बादशाह को मुशीर चाहिए होता है, हर बादशाह वोट का मोहताज है, अपनी राया की सपोर्ट का मोहताज है, वो किसी भी मोहताजी से पाक है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और उस रब को पहचान गए ना जिस दिन, तो ये माथा नहीं टेकोगे कहीं और, किसी से खौफ नहीं खाओगे, किसी का डर नहीं फिरोगा उस रब के सिवा, किसी से भी आपको परेशानी नहीं होगी, ये मेरा कोई नुकसान ना कर दे, हाँ ये मुझे कुछ ना कर दे। सुबहानहू, पाक है वो, व तआला, और बुलंद है, बहुत बुलंद, अन से माँ जो, उससे जो, यकूलून वो कहते हैं, उलूवन कबीरा, वो बुलंदी वाला है बहुत ज्यादा। ये मुशरिकीन जो अल्लाह ताला के बारे में बात करते ना, कभी औलाद कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि फलां उसका शरीक है, कभी कह रहे हैं कि ये उसका मददगार है, कभी नाउज़ुबिल्ला ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं, हालांकि वो तो इससे बहुत बुलंद है, उसके मुकाबले का कोई है ही नहीं। लैसा कमिथली शय, उस जैसा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं। अल्लाह अकबर। लेकिन इंसान ये बातें कह के भी जुबान से, फिर ईमान में कमजोरी है ना, कि फिर इधर उधर डगमगा जाता है, इधर उधर घूमता है, इधर उधर फिरता है, फिर क्यों इधर टकरे मारता फिरता है, फिर क्यों कभी अपने आप को खड़ा कर लेता है अल्लाह के मुकाबले में, खुद को खुदा बना लेता है अपनी जिंदगी के, खुद खुदा बने में, कहते हैं मेरी मर्जी मेरी जिंदगी, अपने तो खुद ही खुदा बन बैठे। तो खुदा को तो आपने उसको खुदाई का दर्जा ही नहीं दिया, अब अपने खुद खुदा है, अब अपनी ही मर्जियां अपनी ख्वाहिशात पे जिंदगी गुजारनी है, अपने मनमाने तरीकों पे गुजारनी है, हलाल हराम ने खुद डिफाइन करना है कि मेरी समझ में ये हलाल आता है और ये हराम आता है, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है, तो कौन है खुदा फिर। और आज की सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे कि अक्सरियत बुतों को भी नहीं पूछते, पत्थरों को भी नहीं पूछते, इधर उधर भी नहीं पूछते, अपने आप को पूछते हैं, ख्वाहिशे नफ्स जिसको हम कहते हैं। और सबसे बदतरीन माबूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ख्वाहिशे नफ्स है। जहां से फिरौन ने नबरून ने खुदाई के दावे किए हुए थे अपने लोगों पे, हम अपने खुद खुदा बने बैठे। तो जिनको भी वो पूछते हैं और जो बातें करते हैं ये अल्लाह ताला के बारे में, उससे वो बुलंद है, बहुत बुलंद है। अब फिरौन नमरूद ने खुदाई का दावा किया था, फिरौन ने इतने साल का हो गया उसके, वो अब खुदाई का दावा कर रहा है, जिस वक्त वो पैदा नहीं हुआ था तब कौन खुदा था फिर, जबकि अल्लाह ताला अल अव्वल वल आखिर है, जब कोई नहीं था तब वो था और जब कोई नहीं होगा तब भी वो होगा। और जिनकी तुम पूजा करते हो, जिनको तुम कुछ समझते हो, चाहे वो फरिश्तों को खुदा की बेटियां कहते हैं या किसी इंसान को या किसी नबी को या किसी औलिया अल्लाह को, कितने कमजोर हैं, क्योंकि वो सब मखलूक है। आज बाज मजाहिब में करोड़ों खुदा बनाए हुए जिनको पूछते हैं, पता नहीं कितने खुदा हैं, जो नुकसान पहुंचाए वो भी खुदा बना लेते हैं, जो फायदा दे उसको भी खुदा बना लेते हैं। तो अल्लाह ताला इन सब बातों से बुलंद है, उसके मुकाबले का कोई नहीं, और वो अपनी मखलूक से भी चाहता है कि अपने आप को खुदा ना बनाओ, अपनी मैं को खत्म कर दो, मैं की कोई हैसियत नहीं है उसके यहाँ, आजी झुक जाओ, अबूदियत अब्द बन के रहो, गुलामी करो। तो सब्बिहु लहु समावातु सब वल अर्द व मन फीहिन, सुभान अल्लाह। इतनी जबरदस्त आयत कि तुम अल्लाह ताला के बारे में ऐसी बातें करते हो, जालमो अगर तुम शिर्क और कुफर करते हो ना, तो उसको कोई से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम उसकी मोहताजी उसके अंदर बयान करते हो, औलाद बयान करके कभी ऐब लगाते हो, ये कह के कि उसके शरीक है, तो उसको कोई नुकसान नहीं है इसका। वो तो कोई समझा रहा हो तो आपको लगे पता नहीं इसको कोई नुकसान हो रहा है, शायद ये उसको कोई फायदा होगा मैं इसकी इबादत करूं, नहीं, सुभान अल्लाह, उसकी तो आसमान तस्बीह करते हैं। जरा गौर करें, असमावात, सुभान अल्लाह, ये जितना कुछ हम देखते हैं ना, ये तो अभी पहला आसमान है। अब वो नई टेलीस्कोप आ गई है जिसमें अब उन्होंने देखा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो ये देखा कि इतनी सी जगह में, इतनी सी जगह को अभी उन्होंने देखा है जितनी कि वो कहते हैं आप अपने बाजू के ऊपर एक रेत का जर्रा रख लेना, इतनी सी जगह का भी मुशाहिदा किया है, तो उसमें कितनी कहकशाएं, कितनी गैलेक्सीज हैं, उनके अंदर पता नहीं कितने सितारे, कितने कितने सैयारे, कितनी कुछ चीजें हैं। और अभी 13 अरब के खरब साल पहले की लाइट चली भी अब जो उन्होंने देखी है, तो कब से कायनात है, कब से कायनात है, वो रोशनी अब पहुंची है जो 13 अरब साल पहले कहीं से चली थी। अल्लाह हू अकबर, इंसान की अक्ल ही दंग रह जाती। वो ये सारा निजाम, वो रब चलाने वाला, और उसकी तस्बीह कर रही है हर चीज। और तस्बीह एक तो जुबाने हाल से है और जुबाने काल से भी है। इसकी जो दलील है वो आगे आ रही है। जुबाने हाल से कैसे, यानी हर चीज अल्लाह ताला की फरमा बरदारी कर रही है, हर चीज उसके हुक्म के ऊपर चल रही है, हर चीज वही काम कर रही है जिसको उसके रब ने, जो उसकी जिस काम का उसको बनाया है, जैसे उसको चलाया है, ये उसकी तस्बीह है। ठीक है, उसकी पाकी बयान कर रही कि मेरा बनाने वाला कोई है, मेरा चलाने वाला कोई है। वो एक सूरज ही है ना, उसी को देख लें कि वो जैसे चल रहा है और उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं, कोई उसके अंदर फुतूर नहीं, कोई उसके अंदर डिले नहीं, जैसे अरबों खरबों साल से अल्लाह ताला ने उसको चलाया हुआ है, वो वैसे ही चलता जा रहा है। ये जुबाने काल से तस्बीह है, यानी वो अपनी अपनी हालत से बयान कर रहा है कि मुझे जिसने बनाया ना वो कितना परफेक्ट है, जिसने मुझे हुक्म दिया देखो मैं उसकी फरमाबरदारी कर रहा हूं। और दूसरे सुबाने कौल से, यानी बोल के भी तस्बीह करते हैं। कौन कौन कर रहे हैं? आसमान सातों और जमीन और जो इनके अंदर है। क्या कुछ है आसमानों में और कीजिए, और क्या कुछ है जमीन में। अभी साइंसदान कह रहे हैं कि हम रिसर्च करने वाले हैं कि और प्लैनेट्स में और सैयारों में भी क्या कोई मखलूक है। अल्लाह की मखलूक को, उसके लश्करों को वही जानता है, हम तो जान भी नहीं सकते उसके लश्कर कितने। हमने अभी जमीन को भी पूरा डिस्कवर नहीं किया, इसमें समंद्रों में कई मखलूकात हैं हमें नहीं पता। जिन्नात को इंसान जान ही नहीं सका, इससे पता चलता है या किसी के पास जाहिर होके आ जाए तो पता चलता है, वरना जिन्नात का भी इंसान को नहीं पता। साइंस ने तो देखा ही नहीं, साइंस के तो इल्म में आता ही नहीं जिन्नात का। अल्लाह ताला ने बता दिया ये भी एक मखलूक है, फरिश्ते एक मखलूक है, साइंस तो जान ही नहीं सकती, आपका तो इल्म इतना कमजोर है। फिर ये रब ने बताया, हमारा ईमान है इस पे, ये गैब की बातें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है तस्बीह करते हैं, हमने मान लिया तस्बीह करते हैं। हम ये नहीं कह सकते हमें तो सुनता नहीं है, तो फिर तस्बीह कैसे करते हैं, हमें तो नहीं सुन रहा, हमें तो बहुत सी चीजें नहीं सुनते। आपको पता है कि इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर इंसान की जो पावर है ना सुनने की, साइंस बताती है, आप इसकी रिसर्च भी करके देख सकते हैं कि एक खास डेसिबल से कम हो तब भी नहीं सुन सकता। अब चींटी की आवाज सुलेमान अलैह सलाम ने सुन ली, मुझे और आपको तो नहीं आती कभी चींटी की आवाजें की ये बातें कर रही हूं। क्यों नहीं आते? अहंकार, उसने तो बात ही नहीं की। नहीं, क्योंकि मुझे नहीं सुनी तो इसका मतलब ये नहीं, एक खास डेसिबल से ऊपर हो तब भी नहीं इंसान सुन सकता। इंसान की जो सुनने की कैपेसिटी है ना वो बहुत एक लिमिटेड है, उसके अंदर अंदर की आवाज सुन सकता। दाऊद अलैह सलाम के साथ पहाड़ तस्बीह करते, परिंदे तस्बीह करते, हम नहीं सुन सकते लेकिन वो करते थे। तो ये हमें पता चलता है कि ये सारी कायनात तस्बीह से गूंज रही है, क्योंकि जब आसमान तस्बीह कर रहे हैं और जो कुछ उनमें है, आसमानों में भी जो कुछ है, क्या है, फरिश्ते, हम तो सिर्फ फरिश्ते जानते हैं ना, और क्या कुछ है, और सितारों में, सैयारों में कौन सी और मखलूक है, कभी एलियंस का कह देते हैं, कभी किसी का, हम नहीं जानते। मगर इतना हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें बता दिया कि आसमान के ऊपर एक बालिश, ये अपना पाम ऑफ योर हैंड आप स्ट्रेच करें और देखें, एक बालिश्त जगह भी नहीं है जहां पे कोई फरिश्ता रुकू में, सजदे में, कयाम में ना खड़ा हो, जहां पे अल्लाह ताला की तस्बीह ना हो रही, मुसलसल तस्बीह हो रही, मुसलसल जिक्र हो रहा, और जमीन में भी, और जमीन के ऊपर जितनी मखलूक है, समंदरों की तस्बीह है, उनकी लहरें, उनका शोर, उनकी तस्बीह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को तस्बीह सुनाई थी, खाने की तस्बीह सुनाई थी। खाने से सहाबा ने फरमाया कि खाना खा रहे थे और खाने से सुबहान अल्लाह की आवाज आ रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चींटियां भी तस्बीह करती हैं। हदीस में आता है एक चींटी ने एक नबी को काट लिया तो उनके हुक्म से चींटियों के सारे घर जला दिए गए। इस पर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही भेजी कि अगर तुझे एक चींटी ने काटा था तो मैंने सारी बस्ती को उनकी जला दिया, राख कर दिया। ऐसी बस्ती जो अल्लाह की तस्बीह बयान करती थी, चींटियां भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती। मेंढक को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारने से मना किया, उसका टर्राना अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे वो पत्थर याद है कि जब मैं अपने घर से हिरा की तरफ जाता था तो वो एक पत्थर था जो मुझे सलाम किया करता था। इसका मतलब उनमें शहूर है, वो समझते हैं बात को। हमें तो लगता है ना कि ये इनको क्या पता, ये तो यौमा इदिन तो हदीस व अखबार रहा, ये जमीन भी कयामत के दिन अपनी खबरें बयान करेगी। इसका मतलब इसके अंदर भी शऊर है। और अल्लाह ताला ने पत्थरों के बारे में भी बताया, इन्ना मिन हालमा या भी तुम इन खशियतिल्ला, इनमें से ऐसे भी हैं जो अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के खौफ से गिरने वाले भी पत्थर हैं, अल्लाह के खौफ से फट जाने वाले भी पत्थर हैं, उनमें से चश्मे बह पड़ते हैं। इसका मतलब इनमें है ना वो समझ, वो जो भी सेंस अल्लाह ने इनको दी हुई है वो है। वो इमिन शे इन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, और भी आगे समझ लें कि इनमें से कोई चीज ऐसी नहीं है मगर वो तस्बीह बयान करती है साथ उसकी हम्द के, अल्लाह ताला की हम्द के साथ तस्बीह बयान कर रही है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, ये मखलूक की तस्बीह है। इसमें पाकी भी बयान करना और फिर ताकीद है हम्द भी, हम्द क्या अल्लाह की तारीफ के साथ उसका शुक्र अदा करना, उसकी तारीफ भी और उसका शुक्र भी, हम्द में दोनों चीजें आ जाती हैं। इंसान तो इसीलिए वो हदीस है ना कि बास सवारियां अपने सवारों से बेहतर होती हैं, कि वो सवारियां अल्लाह की तस्बीह बयान करती हैं। जो सवार होता है वो वैसे ही बैठ जाता है सवारी के ऊपर, राइड करता है, और वो अल्लाह की तस्बीह नहीं बयान करता। अल्लाह अकबर, मुर्ग के अजान देना दरअसल उसकी तस्बीह है। इसी तरह शहद की मक्खी अल्लाह की तस्बीह बयान करती जब वो बिन बनाती है। इसी तरह जो भी चीजें, ये दरख्त, पत्थर और भी जितनी भी चीजें हैं, जो भी लब्बैक सुनती हैं वो उस दिन कयामत के दिन इसकी गवाही देंगी, जो हाजी लब्बैक पुकारते हैं। इसी तरह कयामत के दिन अजान की आवाज, जो भी अजान देने वाला है उसकी आवाज, जो वो भी मखलूक सुनती है वो उसकी कयामत के दिन गवाही देगी उसकी अजान की। तो वह इमिन शे, इनसे पता चलता है कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह की तस्बीह के साथ हमद ना बयान करती हो, हर चीज उसकी तस्बीह के साथ हमद बयान करती है। अल्लाह अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुरुल मंसूर में ये रिवायत है कि जानवरों के चेहरे पे मत मारो क्योंकि हर चेहरा अल्लाह की हम्द के साथ उसकी तस्बीह बयान करता है। तो हैवान भी तस्बीह बयान करते हैं, ये दरख्त भी, ये पत्ता तस्बीह बयान करता है, खाना तस्बीह बयान करता है। और आप ये देखें, नबी अलैहि सलातो वस्सलाम एक तने के साथ, खजूर के एक तने के साथ खड़े होके खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। आज भी वहां पे सुतून है मस्जिद नबवी में, जहां पे लिखा भी हुआ है, वहां पे ये तना हुआ करता था जहां पे, तो वहां पे सुतून हन्ना मेरा ख्याल में इसका नाम है, वहां पे ये तना हुआ करता था, जिसके साथ टेक लगा के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। तो एक औरत ने कहा कि मेरे पास एक गुलाम है जो बड़ा अच्छा लकड़ी का काम करता है, तो वो आपके लिए मिंबर क्यों ना बना दे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है बना दे। उसने बना दिया, एक 3 स्टेप्स वाला एक मिंबर बना दिया। वो मिंबर लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह, उस तने के पास से गुजरते हुए जब मिंबर पे चले गए और उस तने के साथ आपने टीक लगा के खुतबा नहीं दिया, उसके पास से गुजर गए, तो वो तना रोने लगा, वो तना रोने लगा। इस तरह सहाबा ने भी आवाज सुनी। सहाबा फरमाते हैं, इतनी रिवायात है इस बारे में कि वो तने से ऐसे बिलक बिलक के रोने की आवाज आ रही थी, और जैसे कोई बच्चा रोता है ना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उसको गले लगाया, और फिर उसको जैसे बच्चे को आप बच्चा रोता है ना, और फिर उसके बाद आप उसको थपकी देते हैं, गले लगाते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिचकियां बंद होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रोना बंद करता है। तो इस तरह वो आहिस्ता आहिस्ता तना फिर रोना उसने बंद किया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस तरह अपने बाजुओं में लिया। सुभान अल्लाह की एक तना भी जो है उसके अंदर भी शऊर, अल्लाह के जिक्र को सुनता है और अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। ये सारी रिवायात ये साबित करती हैं कि इन चीज़ों में शऊर है। और आप देखिए, आप साइंस भी बताती है, मैटर के अंदर एटम्स हैं और एटम्स के अंदर एक तस्बीह है, सुभान अल्लाह एक तस्बीह है। जिस तरह वो प्रोटॉन, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और जैसे वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, हर एटम के अंदर ये मूवमेंट चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। कि अब इंसानों को नहीं सुन तो नहीं रहा कि इनकी मूवमेंट है, इसकी समझ नहीं है, ये तो आज साइंस ने बताया। इंसान समझता नहीं कि ये भी तस्बीह है, जब हर एक चीज में एटम है और उसके अंदर ये मूवमेंट चल रही है। एंटी क्लॉकवाइज तुम भी तवाफ करते हो, एंटी क्लॉकवाइज अल्लाह ताला की जो मखलूक है, सैयारे हैं, सितारे, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जमीन एंटी क्लॉकवाइज सूरज के गिर्द घूम रही है। इन सब किसी ने तो निजाम बनाया है ना, कोई एक ही है जिसने ऐसे चलाया है। तुमने घड़ियां बना ली, वो क्लॉकवाइज चलती है, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो इतना कुछ तस्वीर कर रहा है इंसान, तुझे इसे क्या समझ आती? अगर सुन सकते होते, मसला ये है, वला किल्ला तफकून तस्वीर, तुम्हें समझ ही नहीं आती इनकी तस्वीर। ये है साबित करती है ये बात कि ये तस्वीर जो है ना, तो इसमें नहीं समझ आने वाली क्या बात थी? अगर वो सिर्फ जुबान हाल से ही कर रहे थे, वो तो समझ आती है कि ठीक है सब फरमाबरदारी का। जुबाने काल से जो तस्बीह है वो नहीं हमें समझ आती ना, हमें नहीं समझ आ रही दरख्त कैसे तस्बीह कर रहा है, हमें नहीं समझ आ रही कि ये पत्ता पत्ता कैसे तस्बीह कर रहा है, आसमान कैसे तस्बीह कर रहा है, यहाँ पे और मखलूकात कैसे तस्बीह। सिर्फ जिन और इंस है ना, ये बगावत करते हैं, क्योंकि इनको अल्लाह ने चॉइस दे दी, चाहे तो तस्बीह करो चाहे तो ना करो, बाकी सबको तस्बीह पे लगा दिया। वो तस्बीह कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, और तुम्हारा अजर इसीलिए तो है कि तुम्हें चॉइस दी कि तुम करो या ना करो। अब जो अल्लाह के प्यारे बंदे होंगे ना, वो ऐसे हो जाएंगे जैसे बाकी कायनात तस्बीह कर रही, वो अपनी खुशी से करेंगे, वो अपनी विल से करेंगे, वो अपनी मर्जी से करेंगे, उनके पास चॉइस है। चाहे तो खामोशी रहे, खामोशी से आप बर्तन धोती जा रही हैं, खामोशी से आप वैक्यूम कर रही हैं, खामोशी से आप गाड़ी चला रही हैं, चाहे तो खामोश रहो चाहे तो तस्बीह कर लो। लेकिन जो अल्लाह के प्यारे बंदे होते हैं, वो उस वक्त अपनी जुबान को तस्बीह में मसरूफ रखते हैं, वो अपनी विल से करते हैं। तो अल्लाह को इसलिए तो उनसे पे इतना प्यार आता है कि इसके पास चॉइस है, ये खामोश रह सकता है, इसके पास चॉइस है कि ये कोई और बातें कर सकता है, फिर भी ये मेरी तस्बीह कर रहा है। बाकी कायनात अल्लाह ने लगा दिया, वो ये उसका काम ही ये है, वो करती रहेगी, उसके पास और चॉइस नहीं है। तुम्हारे पास चॉइस है, इसलिए तुम्हारा अजर इतना ज्यादा है कि तुम सुबहान अल्लाह ही बाबी हमदी का जिक्र करते हो, एक बार, दो बार, 100 बार, जितना भी करते हो। तो देखो, 100 बार करोगे तो तुम्हारे गुनाह ऐसे धुल जाएंगे कि समंदर की झाग के बराबर भी हो तो वो भी धुल जाए, इतना अजर है इसका। क्योंकि तुम्हें किसी ने मजबूर नहीं किया, तुम खुशी से करते हो, ये तराने तुम खुशी से गाते हो, तुम सारी मखलूक को देखते हो, ये तस्बीह कर रही है, मैं क्यों ना करूं, कि मेरा रब इस काबिल है कि मैं उसकी तस्बीह करूं, क्योंकि उसके मेरे ऊपर इनामात सबसे ज्यादा है, मैं तो घिरा हुआ हूं उसकी नेमतों में, मेरा रुआ रुआ उसका एहसान मंद है, ये हमारा रुआ रुआ है ना, ये भी अल्लाह का एहसान मंद है, इतने उसके एहसान, मैं क्यों ना तस्बीह करूं, मैं तो जिंदगी भर भी तस्बीह करता रहूं तब भी कम है कि एक फरिश्ता वो भी है। अल्लाह अकबर, जब से अल्लाह ताला ने उसको पैदा फरमाया तब से सजदे में है और अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है, और कयामत के दिन वो अपना सर उठाएगा और कहेगा, अल्लाह तेरा हक तब भी अदा ना हुआ, तेरा हक नहीं अदा हुआ, मैं और आप जुबान से कहते हैं कि अल्लाह ताला के हमारे ऊपर बड़े इनामात हैं, बड़ी नेमतें, हाँ बेहिसाब इनामात, लेकिन मुंह से तस्बीह क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं है? दिल से कहते हैं सुबहान अल्लाह ही बाबी हमदी, सुबहान अल्लाह, क्यों जुबान पे और कितने तराने गाने हम गाते हैं, फजूल बातें हम करते हैं, इधर की बात उधर की बात फजूल बोलते भी रहते हैं, लेकिन तस्बीह क्यों नहीं जुबान पे जा रही होती? सुन के तो देखें सारी कायनात गूंज रही है जिस रब की तस्बीह से, मैं क्यों पीछे हूं, मेरे अंदर तो शऊर है, उनमें तो शऊर भी नहीं, उनमें वो अकल थोड़ी है जो मेरे अंदर है, वो तो अशरफुल मखलूकात नहीं है, मैं हूं अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ताला ने मुझे सब में बेस्ट बनाया, मैं क्यों ना तस्बीह करूं, वो मकाम और मर्तबा दिया जो फरिश्तों के पास भी नहीं, फरिश्तों से भी सजदा करवा दिया फिर भी ना मैं तस्बीह करूं, अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर। तो इंसान ने तस्बीह क्या करनी, वो तो अल्लाह ताला के लिए ऐब बयान करता है, उसके औलाद बयान करता है, उसके शरीक बयान करता है, उसके ऊपर झूठ बांधता है, कहीं और दर पे जाके उनको पुकारता है जो खुद उसके जैसे मोहताज है, ये करके उसको डिसऑनर करता है, फिर भी इन्ना वो काना हलीमन गफूर, फिर भी वो हलीम है, उसका हिल्म है, उसकी बर्दाश्त है, उसकी हिल्म क्या होता है, बुर्दबारी, यानी सजा देने में जल्दी नहीं करता कि वो जल्दी से पकड़ ले, देखो ये तो बजाय इनको तस्बीह करने का इनको सबसे अच्छा मैंने पैदा किया, फिर इसके बावजूद ये ही उल्टा अल्लाह के साथ शरीक ठहरा, उसको गाली दे, तो फौरन इंसान को तो वो चाहे तो कुन कह के इंसान को मिलिया मीट कर दे, खत्म कर दे, बर्बाद कर दे, हलाक कर दे, सफाए हस्ती से मिटा दे, उसको भी उसकी सारी औलाद को भी और उसके सब चीजों को भी, लेकिन देखो उसका हिल्म कितना है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला के अंदर जो अल्लाह ताला की सिफात है ना, सिवाय तकब्बुर के, तकब्बुर उसको सिर्फ जेब देता है, उसके अलावा जो सिफात है अल्लाह ताला चाहता है बंदों में भी इनका रिफ्लेक्शन हो बंदे, क्योंकि ये प्यारी सिफात है, ये सबसे बेहतरीन सिफात है, तो हिल्म इंसानों में नहीं है, हमारे अंदर देखें कितना थोड़ती ले हम, किसी ने कुछ कहा, जल्दी से फटाफट उसको जवाब दिया, जल्दी उसको सजा देने की या उसके साथ बदला लेने की कोशिश की, इंतकाम फौरन लेना चाहती। कहते इसने सुनाई है तो मैं चैन से नहीं बैठूंगी जब। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तू ही है रब, या अल्लाह तू ही इला है, तेरे जैसा वाकई कोई है ही नहीं। लई सका मिथली शही, कोई जिसको भी पूजता है उनको भी देख लो, उनको नाराज कर दो तो वो कितनी जल्दी इंतकाम लेंगे, कितनी जल्दी वो सजा देने पे उतर आए, कितनी जल्दी वो उसके लिए बुरा चाहेंगे, कितनी जल्दी हम और कुछ नहीं भी कर सकते ना, बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं। हमारे पास जब जोर और नहीं होता ना इंतकाम लेने का, तो दिल से बद्दुआएं देते हैं, इतनी बद्दुआएं देते हैं, दिल दिल में बुरा भला कहने लगते हैं। लेकिन वो रब कैसा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, उलिया इबादी अल्लदीना असरफू अनफुसहुम। कह दीजिए मेरे बंदों से जिन्होंने अपने जानों पे जुल्म किया, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। फिर वो ये नहीं करता मैं इनको फटाफट सजा दे दूं। तुम बुरा देखते हो, बुरा सुनते हो, बुरा बोलते हो, बुराइयां करते हो, नाफरमानियां करते हो, धड़ल्ले से करते हो, फिर अल्लाह के ऊपर बातें बनाते हो, फिर ऐसी मैं मुशरिकों की तो क्या बात करनी, वो तो शिर्क करके बुरा कर रहे हैं अपना। जो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भी ऐसी ऐसी बुराइयां और ऐसी ऐसी बातें जुबान से निकालते हैं, ऐसे ऐसे गलत काम करते हैं, फिर उसका हिल्म उस रब का देखें। वो चलने भी देता है, फिरने भी देता है, उनको रिस्क भी देता है, उनको खिलाता पिलाता, उनका खाना भी हजम हो रहा है, निकल भी रहा है, वो उनकी आंखें भी देख रही हैं, उनके कान भी सुन रहे हैं, वो सांस भी ले रहे हैं, वो चलते फिरते भी हैं, वो फलते फूलते भी हैं, उनकी औलादे भी ठीक रहती हैं, सब उनके काम चल रहा है, कुछ नहीं उनको कहता, उसका हिल्म है। अच्छा हम हिल्म कब दिखाते, जब तहम्मुल हमारा कब होता है, मैंने जी बड़ा बर्दाश्त किया, पता है बर्दाश्त कब, जब हमसे कुछ किया नहीं जाता। लेकिन उस रब की सिफत कितनी बड़ी है कि देखो उसके पास सारी पावर है कुछ करने की, फिर होता है तहम्मुल के फिर भी नहीं वो पकड़ रहा। अल्लाह अकबर, जिसके पास ताकत ना हो उसने तो कुछ करना ही नहीं, वो क्या बेचारा इंतकाम लेगा। बात तो तब है कि जिसके पास ताकत है, कुव्वत है, एक कुन कहने पे पूरी कयामत बर्पा हो सकती है, एक कुन कहने पे। फरिश्ता तो सूर लेके खड़ा हुआ, उसने तो अपनी नजरें लगाई हुई है, इसराफील अलैहिस्सलाम इसका एक मुंतजर है कि कब कुन हो जाए तो मैं सूर में फूंक दूं। उसका तो सिर्फ कुन कहना ही काफी है, इरादा करना ही काफी है, तो सारा जहान पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, फरिश्ते तकों को मौत आ जाएगी, तब भी उसका तहम्मुल देखे। जब मैं ये देखती हूँ ना, ये इनके कभी गुजरते हुए ऐसे भी इन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं जिनमें बड़े बड़े बुत नसब किए हुए सड़क से नजर आते हैं, मैं एक ही बात सोचती हूँ, अल्लाह तेरा तहम्मुल कितना है, आग लग जाती है ये देख के क्या इंसान, तू किसके आगे झुक रहा है, किधर माथा टेक रहा है, तू उस रब को छोड़ के क्या कर रहा है। मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा कितना तहम्मुल है, या अल्लाह तू चाहे तो बिजलियां गिर जाए, सब चीज को आग लग जाए, तू चाहे तो जमीन फट जाए, ये सब कुछ अंदर चला जाए, तू चाहे तो आसमान गिर जाए, तू चाहे तो समंदर ऊपर आ जाए चढ़ दौड़े, कितना नंग धड़ंग कितना कुछ समंदरों के ऊपर हो रहा है, कुल्ला कुल्ला नाफरमानी, कुल्लम कुल्ला, ए अल्लाह तेरा कितना तहम्मुल, अल्लाह तू वाकई तू हलीम है, कोई और नहीं तेरे जैसा, इन्नहू काना, वो है और मुसलसल है, एक दफा नहीं कि एक दफा तहम्मुल किया, अब दोबारा करोगे ना तो फिर देखना, फिर यानी इस्तमरारी है ना ये मुस्तकिल उसका तहम्मुल है मुस्तकिल, और फिर मोहलत दिए जाता है तहम्मुल उसका, ये ना कि सजा में पकड़ता नहीं है, मोहलत दे रहा है, मोहलत दे रहा है, फिर एक दिन बंदे को ख्याल आ जाता है, एक दिन उसको बात समझ आ गई, 90 साल का होके उसको समझ आ गई, 100 साल का होके अब उसने सोचा हाँ नहीं नहीं वाकई मैं बड़ा गलत मैंने किया है, मैं तौबा करता हूँ। तो तब भी वो ये नहीं कहता, अब तुझे याद आ गया, अब इतना कुछ करके अब तू पलटा, अब तो तेरे जाने के दिन करीब है, अब तो कब्र में तेरी पैर है, अब तो तू ऐसा, तब तो तू नाकारा हो गया, अब तुझे मैं याद आया, फिर भी वो गफूर है। अल्लाहू अकबर, दोनों प्यारी सिफात साथ साथ, हलीमन गफूरा, पहले तहम्मुल, हिल्म ना होता उसका तो उसी वक्त सफाया हो जाता, और फिर गफूर ना होता तो फिर तुम देर करके आते तो वो कहता अब नहीं माफ करूंगा, अब इतनी देर हो गई। तो हिल्म भी है, और कभी तुम्हें याद आ जाए, कभी समझ आ जाए, तो वो गफूरा भी है। याद रखना ये बात, उसकी तरफ पलटने में देर ना करना, फिर जब पलटोगे तो उसको गफूर पाओगे। शर्मनाक बात यह है कि इंसान उसकी इसी सिफत को लेकर और मुंह जोर होता है, सरकश होता है कि वो तो गफूर ही है ना, तो ठीक है मैं जो मर्जी करता, बजाय इसके कि जल्दी झुक जाए, बजाय इसके कि रोते हुए उसके आगे आजी करें, सजदे में चला जाए उसके आगे, बजाय इसके कि अब सर ना उठाए, बजाय इसके कि मोहब्बत से उसकी तरफ बढ़े, वो और सरकशी दिखाता है। तो अल्लाह ताला का तो कुछ भी बिगड़ता नहीं, तुम सरकश हो ना फरमान हो, उसकी तस्बीह तो आसमान और जमीन और जो कुछ इसमें है सब तस्बीह कर रहे हैं उसकी हम्द के साथ, तुम्हें समझ आए या ना आए। इसके बाद इंसान स्पीचलेस है, क्या कहते हैं आप इसके बाद, इस आयत को पढ़ के, सो ओवरवेलमिंग, किधर जाएंगे फिर, उस रब को छोड़ के किधर जाएं। अल्लाह हू अकबर, वाइजा करात अल कुरान, और जब आप कुरान पढ़ते हैं, ए नबी, नबी अलैहिस्सलाम तो कुरान पढ़ के ही तबलीग फरमाया करते थे ना, हम वो कोई और बातें नहीं करते थे, कुरान पढ़ के सुनाते थे लोगों को। तो बजाय इसके कि बात समझ आ जाए, बजाय इसके कि कोई सीधे हो जाए, ईमान ले आए, कुरान दिल में उतर जाए, जालना बैन का व बैन अल्लदीन ला यूमिनून बिल आखिरत हिजाब मस्तूरा, तो हम कर देते हैं, हम डाल देते हैं आपके दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, एक पर्दा छुपा हुआ, एक पर्दा आ जाता है। जब पर्दा आ जाए तो बात क्या समझ आएगी, जब पर्दा आ जाए तो फिर क्या ईमान लेकर आएंगे, तो एक पर्दा आ जाता है आपके और उनके दरमियान, इसलिए उनको बात ही नहीं समझ आती। अब ये पर्दा क्यों आता है, आप कहेंगे कि लाने ही पर्दा डाल दिया तो फिर अब उनका क्या कसूर, नहीं, जब इंसान समझने के लिए तैयार ही ना हो, जब इंसान का रवैया ये हो कि मैंने तो मानना है ही नहीं, जब इंसान अपने कुफर को छोड़ने पे, अपनी इसलाह करने पे तैयार ना, तो फिर हिजाब आ जाता है। जब इंसान ख्वाहिशात में डूबा हुआ, जब इंसान शैतान का पैरोकार बन जाता है, अपने नफ्स का पैरोकार बन जाता है, तब नहीं उसने समझना। एक स्टेज आती है फिर कि कुरान असर नहीं करता फिर। और आप इसकी एक मिसाल देख लें, उम्मे जमील जो अबू लहब की बीवी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची थी, जब सूरत लहब नाजिल हुई तो उसने एक पत्थर उठाया और वो अपने घर से निकली और उसने कहा कि मुजम्मम मुजम्मम, मोहम्मद की जगह मुजम्मम कहने लगी, ये पुकारती भी निकली कि कहाँ है वो, और मैं तो उसकी नाफरमानी करती हूँ, और मैं तो उसकी कोई बात नहीं मानती, और मैं तो उस चीज का इनकार करती हूँ जो वो लेकर आया, जो दीन वो पेश करता है, मैं उसको रद्द करती हूँ। तो वो हरम में जब दाखिल होती है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए, तो देखा तो फरमाया कि ये कुछ आके बोलेगी, अब कुछ कहेगी, तो वो आ रही है। आप ससुर ने फरमाया तुम ना फिक्र करो। वो आई और उसने आगे कहा, अबू बकर सिद्दीक से, तुम्हारे रफीक कहाँ है, वो हमें बुरा भला कहते हैं, मैं तो सरदार की बेटी हूं, वो कैसे मुझे बुरा कहेंगे। अच्छा, उसको नजर ही नहीं आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए यहाँ पे। अल्लाह ताला ने पर्दा हायल कर दिया, तो जिसका चाहे अल्लाह ताला पर्दा हायल कर दे। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान बयान कर रहे हैं, कुरान सुना रहे हैं पढ़ के, तो पर्दा आ जाता है दिल पे, समझ ही नहीं आती उनको। कुरान तो कहता है ना कि जब कुरान पढ़ा जा रहा है, फस्तमीउ लहू वअन्सितू लअल्लकुम तुरहमून, तो इसको गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो गौर से सुनना जरूरी होता है, खामोश रहना जरूरी होता है, तब ही कुरान समझ में आता है, तब ही दिल में उतरता है। और शोर शराबा मचाया हुआ, अपनी बातें कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और साथ कुरान लगाया हुआ, तो क्या समझ आएगा, क्या दिल में उतरेगा। तो इनके वो दिलों पे एक पर्दा सा छा जाता है, एक छुपा हुआ पर्दा, जिसका इनको भी पता नहीं चलता। और ये कई दफा खुद कहते थे, हमारे तो दिल पर्दे में है, आप जो मजे जाते, जो चीज पर्दे में हो जाए आप मुझे बताएं उसके अंदर कुछ दाखिल हो सकता है। और कभी तो किसी के दिल पे लाइट पर्दा होता है, किसी के दिल पे बहुत हैवी पर्दे होते हैं, ऐसे पर्दे जिनके अंदर से कोई चीज गुजर ही नहीं सकती। और आज भी ऐसे लोग हैं जो कुरान सुनना ही नहीं चाहते, कुरान से भागते हैं, उनके दिलों पे भी पर्दे ही पड़ गए हैं, ख्वाहिशात के पर्दे हैं ना। असल में कुरान क्यों नहीं सुनना चाहते, क्या वजह है। यहाँ पे बताएगा ला यूमिनूना बिल आखिरा, आखरत पर ईमान नहीं है ना असल में। आखरत पर ईमान हो तो इंसान को एक फिक्र लग जाती है, फिर जैसे हमें अपने फ्यूचर की फिक्र होती है, अपने बच्चों के फ्यूचर की फिक्र होती है, भाई क्या क्या कमाएंगे, क्या इनके साथ होगा, ये होगा, हमें अपने फ्यूचर की भी फिक्र है, कल को मेरे साथ क्या बनेगा, मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन संभालेगा। जिसका ईमान आखरत पे हो ना, उसको आखरत की सबसे ज्यादा फिक्र लग जाती है, मुझे सब वहां पे क्या होगा। जब ईमान है, जब यकीन है कि एक आखरत है, तो यकीनन जब यकीन होगा तो फिक्र जरूर होगी। जब ईमान होता है ना, ऐसे नहीं हो सकता कि फिक्र ही ना लगे, हाँ मुझे ईमान है ना, एक आखरत है, देखो मुझे फिक्र कोई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, फिक्र जरूर लगती है फिर। और जब फिक्र लगती है तो इंसान फिर सोचता है कौन सा रास्ता, कैसे मैं वहां के अजाब से बचूं, कैसे मैं जहन्नुम से बचूं, कैसे मैं जन्नत में पहुंचूंगा, फिर वो तलाश में लग जाता है, क्योंकि जाहिर है फिक्र जो उसको खाई जा रही है अंदर से, मैं कौन से रास्ते पे चलूं, नहीं, मुझे तो वहां पे कामयाब होना है, वहां पे नाकामी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वहां पे तो कोई चॉइस नहीं, बस मुझे तो जन्नत में ही जाना है, मैं तो नहीं बाबा बर्दाश्त कर सकती जहन्नुम के अजाब को। फिर इंसान के अंदर ये आती है ना बात, अब वो तलाश में निकलता है, मैं कहां से मुझे वो रास्ता मिल जाए, तब वो कुरान को देखता है कि ये है जो मुझे रास्ता दिखाता है जन्नत का। आप सरसर ने फरमाया ना, जो जो इल्म हासिल करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। तो इस रास्ते की तलाश में, जब वो रास्ते की तलाश में निकलता है ना कि मेरा रब कैसे मैं जन्नत तक पहुंचूंगा, मुझे तो तरीका नहीं पता, मुझे कौन बताएगा तरीका, अल्लाह ताला तरीका बता रहा है, फिर वो इस कुरान की तरफ आता है, फिर इसीलिए कुरान उसके दिल में उतरता है, क्योंकि पीछे क्या चीज है, ये मोटिव है कि मुझे रास्ता मिल जाए जन्नत तक का, ये मोटिव है कि मैंने जहन्नुम से बचना है, तो ये ईमान बिल आखिरा जब होगा तभी ये फिक्र आएगी, तभी कुरान की तरफ भी आएगी। जब ईमान बिल आखिरा है ही नहीं, या इतना कमजोर है, तो फिर जाहिर है फिर इंसान को फिक्र ही नहीं है, इतना कमजोर है ना। अच्छा होगा, होगी आखरत तो देखी जाएगी भाई, जब कयामत आएगी भी तो देखी जाएगी, इसका मतलब बहुत वीक है, आएगी कयामत लेकिन देखी जाएगी, बहुत वीक ईमान की निशानी है ये कहना। तो वीक ईमान जब आखरत के ऊपर होता है, फिर भी कुरान, कुरान तो एक फालतू चीज लगती है, फिर फारे लोगों का काम लगती है, घरों में बैठी भी औरतें, इनका कोई और को काम है नहीं, जी हमने तो जॉब भी करनी है, हमने तो ये भी करना, हमारे पास और हजार काम है, हमारे पास थोड़ी है, अभी इनके पास तो कोई काम ही नहीं है, तो बैठी हुई है, फिर ये बातें आती हैं, फिर ये जरूरत नहीं लगता। जरूरत उसी को महसूस होगी जिसके अंदर ईमान बिलाखरा स्ट्रांग होगा। तो ये इसलिए ईमान बिलाखरा वो मोटिव है, ईमान बिलाखरा वो चीज है जिस जब होगी तो फिर कुरान असर भी करेगा, फिर इंसान अमल के लिए भी दौड़ता है, और जब ये नहीं होता तो हिजाब अब मस्तूरा होता है। तो इसी तरह एक हिजाब की बात ये भी है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुशरिकीन से की आंखों से मस्तूर होना चाहते थे तो कुरान की आयतें कुछ पढ़ते थे, जैसे सूरह कहफ की आयत है, इन्ना जालना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ्कहू फी आज़ानिहिम वक़्रा, सूरह नहल की आयत पढ़ते, उलाइक अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम समीउ व अबसारीन, ये सूरह जासिया की भी आयत है, अफराइत मन इत्तखज़ इलाहु हवा, ये वाली आयत। तो आपको पता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत भी कर रहे थे तो तब भी मुट्ठी उठाई थी मिट्टी की और फिर सूरह यासीन की आयत पढ़ के उनके ऊपर फेंकी थी, तो वो अंधे हो गए थे। और हज़रत काब फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जब मैंने देखा था ये अमल, तो मैंने मुल्क शाम के एक शख्स से बयान किया, उसको किसी जरूरत से रूमियों के मुल्क में जाना था, वहां गया और एक जमाने तक वहां मुकीम रहा, फिर रूमी कुफार ने उसको सताया तो वो वहां से भाग निकला, उन लोगों ने उसका पीछा किया। तो इस आदमी को ये बात याद आ गई और उसने ये तीनों आयतें पढ़ी, तो अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि जिस रास्ते पर ये चल रहे थे उसी रास्ते पर दुश्मन भी गुजर रहा था मगर वो उनको देख नहीं सका, इतनी पावरफुल ये आयत है। तो अल्लाह ताला फिर इस तरह से वाकई भी आंखों पे पर्दा भी डाल देता है। तो सूरह यासीन की भी जो आयत है ना, शुरू से भी पढ़ ले तो भी ठीक है, लेकिन अंदर वहां से वहां तक इन्ना जाला फी आना की मगला फैयाद व जालना मिन बैनी अईदीम सद्दम व मिन खल्फीम सद्दम फाख्शैना फहुम ला युबसिरून। और इमाम कुर्तुबी भी फरमाते हैं कि ये जो पहली तीन आयतें मैंने आपको बताई इनके साथ सूरह यासीन की भी आयत मिला ली जाए, तो ये हिजरत के बाद आपसे सलम ने पढ़ी थी। और इमाम कुर्तुबी फरमाते कि मुझे खुद अपने मुल्क उंदलुस में कुर्तुबा के करीब किले में ये वाक्या पेश आया कि मैं दुश्मन के सामने भागा और एक गोशे में बैठ गया, दुश्मन ने दो घोड़े सवार मेरे ताकों में, दो घुड़सवार ताकों में भेजे और मैं बिल्कुल खुले मैदान में था, कोई चीज पर्दा करने वाली ना थी, मगर मैं सूरह यासीन की आयतें पढ़ रहा था और वो दोनों सवार मेरे बराबर से गुजरे, फिर जहां से आए थे ये कहते हुए लौट गए कि ये आदमी तो कोई शैतान है क्योंकि वो मुझे देख ही नहीं सकते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको अंधा कर दिया था। तो इसलिए ये आयात बहुत, इसमें यासीन से लेके ला युबसिरून तक ये भी आयात बहुत ही इंसान को के लिए प्रोटेक्शन के लिए इंसान पढ़ सकता है। वह जालना अला कुलूबी अकिन्नतन अन यफ़क़हू वफी आदानी वक़रा, और हमने इनके दिलों पे भी गलाफ चढ़ा दिया कि ये समझ ही नहीं सकते और इनके कानों में भी बोझ होता है, तो आंखों पे पर्दा आ जाता है, दिल भी गुलाफ में हो जाते हैं, कानों पे भी बोझ होता है, तो फिर कैसे हिदायत मिले। जाहिर है अल्लाह ताला ये हिदायत का जो पैगाम है ना, अल्लाह ताला उसी को अता फरमाता है जिसके अंदर इसकी तलब हो, जब जब किसी के अंदर ये तलब ही ना हो ना, तो अल्लाह ताला भी जो समझता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे तो इस तरफ आना भी नहीं, वो जो इससे बेजारी का इजहार करता है, अल्लाह का जिक्र ही पसंद नहीं करता, तो अल्लाह ताला भी फिर उसके दिल को ऐसा कर देता है कि दिल पे गिलाफ आ जाते हैं। अब वो कानों से सुनता है लेकिन कानों को अच्छा नहीं लगता ये सुनना, बोझ होता है, इसीलिए तो अजान हो रही हो, कोई दर्स हो रहा हो, कोई कुरान पढ़ा जा रहा हो, फौरन लोग चैनल चेंज कर देते हैं, वो सुनना नहीं पसंद करते, कहीं कोई गाना गा रहा हो, कोई ड्रामा फिल्म लगी हो वो अच्छा लगता है, ये बोझ लगता है कि कानों में बोझ है जैसे, अल्लाह ताला इससे महफूज रखे। वा इज़ा ज़क्कर्ता रब्बका फिल कुरान और जब आप जिक्र करते ना अपने रब का कुरान में, वाहदहू, उस अकेले का, जब आप अकेले अल्लाह का जिक्र करते हैं कुरान में, वल्लहु अला अदबारिहिम नुफूरा। देखिए पहले भी ये बात आई कि नफरत से भागते हैं कुरान सुन के, इनको अच्छा नहीं रखता कुरान, ये आयत 41 में। अब फिर आई कि ये जब कुरान में एक अल्लाह की बात की जाती ना, यानी तौहीद की बात, तौहीद की बात नहीं पसंद आती, पीठ फेर के भागते हैं। आप करा लें सात बीबियों की कहानियां सुना लें, आप कोई किससे कहानियां और लेके बैठ जाएं, कोई हिकायतें सुनाना शुरू कर दें, कोई कुछ करें, वो बड़े शौक से सुनेंगे, लेकिन तौहीद का जो जिक्र है ना वो अच्छा नहीं लगता, तौहीद नहीं उनको पसंद आती, उसको नहीं बर्दाश्त करते। इसलिए कि कुरान जो है ना, इनके गलत अकीदों की, आबाओ अजदाद की रस्मों की जो खराबियां हैं इनके अमल में, उनको, उनकी जड़ काटता है, इसलिए इनको बोझ लगता है, बर्दाश्त नहीं होता। और अल्लाह ताला की वादानियत की बात इसलिए नहीं बर्दाश्त होती कि अकीदे में जो इतने हैं सबको काट के एक अल्लाह की बात करना, तो ये तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर तो इसका मतलब है कि किसी के पास भी ना हम जाए, सब छोड़ दे, सिर्फ एक अल्लाह को ही मांग, सिर्फ एक अल्लाह से ही मांगनी, तो ये नहीं उनको पसंद आता। अब देखिए तौहीद जो है, जब तौहीद का दर्स होता है, ये उस चीज को ज्यादा यहाँ पे हाईलाइट किया गया, वैसे ही कुरान से भिदकते हैं, लेकिन तौहीद खास तौर पे इनको पसंद नहीं आती, ये मुशरिकों की बात बताई गई। और अगर हम भी तौहीद को कुछ ना समझें और कहें कि ये वाली बात ना करें, वैसे आप कह दें कि नमाज रोजे इसके ऊपर कोई लेक्चर दे दें, तौहीद की बात नहीं हम सुनना चाहते, तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये तो बात वो है कि जो मुशरिकीन करते थे, अकेले रब का जिक्र नहीं सुनना, नफरत से भागते हैं।